नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
आज वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
ഞാന് വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूल के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं रहेंगी। राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया गया है। महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी। एक ऐतिहासिक फैसले में पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित की गई है। ग्रुप बी के पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष की रहेगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।